उपस्थित महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाई, हम सब लोग साधक के जीवन पर विचार कर रहे हैं कि साधना की आवश्यक बातें समझ में आ जाती हैं, अच्छी भी लगती हैं, उनका अनुसरण भी करना हम पसंद करते हैं, फिर भी वे बातें जीवन में उतरती नहीं हैं। इस दुख से बहुत से साधक भाई बहन दुखी रहते हैं। क्या बताएं, भगवान की सत्ता को मैंने मान भी लिया और उनका भजन करना अपने को जरूरी मालूम होता है, ध्यान करना जरूरी मालूम होता है, जप करना जरूरी मालूम होता है, परंतु जब भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो संसार का चित्र दिखाई देने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अनेक साधकों से इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। यह एक बड़ा ही जोरदार प्रश्न है कि जिस बुराई को हम लोग बुराई करके जानते हैं उसको छोड़ने में देर क्यों लगी, और जिस सच्चाई को सच्चाई करके मानते हैं उसको स्वीकार करने में, उसका अनुसरण करने में देर क्यों लगी? क्यों आज तक हम लोग अपने को संसार के चिंतन में फंसा हुआ पाते हैं और परमात्मा की नित्य उपस्थिति के अनुभव से शून्य है? एक बड़े सज्जन, बड़े अच्छे साधक स्वामी जी महाराज के सत्संग में आते जाते रहते थे। महाराज जी के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद उनसे एक बार भेंट हुई तो वे मुझसे कहने लगे कि दीदी, आप मुझे एक बात बताइए कि भगवान को हम लोग मानते ही रहे और अंत में भगवान न निकला तो क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि भगवान को मानते हैं ऐसा आप कह रहे हैं, परंतु भगवान अपने ही भीतर विद्यमान हैं, इसका आपको कोई आभास नहीं है। उनकी विद्यमानता का आभास कुछ भी अपने को मिल गया होता तो ऐसा संदेह नहीं होता। ऐसा प्रश्न अगर अपने में उठता है तो इसका मतलब यह है कि जो सत्य है, जो नित्य है, जो सर्वत्र है, सदैव है, सभी में है, सभी का प्यारा है, सभी का अपना है, इन सारी बातों को सुनते हुए मानते हुए भी हमारा जीवन उसकी विभूतियों से शून्य है। बहुत जोरदार प्रश्न है। इसका अवश्य ही हमारे सामने निराकरण होना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने इसके संबंध में यह सुझाव दिया कि भाई देखो, मनुष्य के व्यक्तित्व में दो पक्ष हैं। एक प्रकाश है जिसमें कि हम लोगों को सही गलत का ज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है इस बात की जानकारी हम लोगों को मिलती है, और जिंदगी में एक भावात्मक गतिशीलता है, एक इस प्रकार का बल है मनुष्य के जीवन में, भाव पक्ष का, जीवन की सरसता का, कि जो सच्चाई की ओर, परमात्मा की ओर, प्रेमास्पद की ओर संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रवाहित करता है। इन दोनों को स्वामी जी महाराज ने दो शब्दों से संबोधित किया है। एक को कहा मस्तिष्क का पक्ष और एक को कहा है हृदय का पक्ष। इस विषय को मस्तिष्क के विश्लेषण में मनोविज्ञान में भी मैंने पढ़ा था, बड़ा विस्तार पढ़ा था, इसलिए मेरी समझ में आ गया श्री महाराज जी क्या कह रहे हैं। संतों की वाणी सुनकर, ग्रंथों के वाक्यों को पढ़कर बुद्धि का विकास हो जाता है, भाषाओं के शब्दार्थ हम सीखते हैं, संत महात्माओं की संगति में बैठकर उनके वचन सुनते सुनते बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे चिंतन वाले शब्दों का अर्थ भी हम लोगों की समझ में आने लगता है। इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, ज्यादा देर भी नहीं लगती है। मस्तिष्क का विकास जो है इस रूप में जल्दी हो जाता है, फिर भी साधना में प्रगति नहीं होती है, क्योंकि सच्ची बात को सच्ची बात कहकर स्वीकार कर लेने के बाद भी उसके अनुसरण से आदमी अपने को बचाता रहता है। बुराई को बुराई जान लेने के बाद भी उसके त्याग में हम ढीलापन रखते हैं। सोचो तो सही, तुम्हें सत्य का अनुसरण भी करना है, अपने ही में जो विद्यमान है उससे अभिन्न भी होना ही है, तो बुराई का त्याग करना ही पड़ेगा, फिर भी ढीलापन है। इस प्रकार की दुर्बलता क्यों रखते हो? इस प्रकार की दुर्बलता को मिटाने का उपाय हमें करना ही पड़ेगा। उपाय क्या है? अब उपाय सुनिए। एक है विचार का पक्ष और एक है भाव का पक्ष। विचार के द्वारा पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और भाव शक्ति में वेग होता है, उसमें तीव्रता होती है, जिससे व्यक्ति का जीवन उस सत्पथ का अनुसरण करने में बड़ी तीव्र गति से लग जाता है। अपने लोगों को विचार तथा भाव दोनों पक्षों का विकास करना होगा। अपनी वर्तमान दशा देखो, दशा ऐसी मालूम होती है कि बहुत सी अच्छी बातों को हम लोग जानते हैं, लेकिन अच्छी बातों को जान करके उसका अनुसरण नहीं कर सकते। एक सज्जन स्वामी जी महाराज के पास आए और कहने लगे, बाबा जी आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ हमें बताइए। स्वामी जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं भाई, तुम तो मास्टर डिग्री वाले हो, 20 वर्ष मुझको पढ़ाओगे, मैं क्या बताऊं। उसने कहा, नहीं नहीं बाबा जी आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, मुझको कुछ बताइए। श्री महाराज जी ने पूछा कि भैया तुम एक बात पहले मुझे बताओ कि तुमको कुछ अच्छी बातें मालूम हैं कि नहीं। तो उसने कहा कि मालूम तो है स्वामी जी, मैं कुछ कुछ अच्छी बातें जानता हूँ। महाराज जी ने पूछा कि जो अच्छी बातें जानते हो उनको तुमने मान लिया क्या? वह पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति था, सच्चा आदमी था। उसने कहा, नहीं महाराज मान तो नहीं।
महाराज जी ने कहा कि यार मैं अपनी अच्छी बात क्यों सुनाऊं? जब तुम अच्छी बात जानते हो और उसको नहीं मानते हो तो मैं अपनी अच्छी बात का निरादर तुम्हारे द्वारा क्यों करवाऊं? मैं नहीं बताऊंगा। यह विनोद का विनोद है और बड़ा ठोस सत्य है। आप सभी अनुभव करते हैं कि हम लोग अपनी जानी हुई अच्छाई का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि विचार के आधार पर त्याग की भावना आपने अपने में रख लिया, फिर भी अगर हृदय ऊंचा नहीं है तो त्याग सिद्ध नहीं होता। समझ में आता है? विचार विकसित हो जाए और हृदय संकुचित रहे तो उसी हालत में यह दशा होती है जो हम लोगों की है। एक दिशा से संपत्ति आई है और समय के प्रवाह में बहती हुई निकल जा रही है। अगर उसके सामने आए हुए काल में दुखी जनों की सेवा में लगा के सदुपयोग कर डालोगे तो धन के लोभ से, उसकी आसक्ति से मुक्त हो जाओगे। दाता ने दिया था इसलिए कि तुम अपनी गंदगी की सफाई कर लो, लोभ और आसक्ति के दोष से मुक्त हो जाओ और तुम उसको लोभ की दृष्टि से देखते रहे तो देने की हिम्मत नहीं हुई और प्रकृति के विधान से वह संपत्ति निकल गई। आया हुआ मौका चला गया और मैं जैसे के तैसे संकुचित हृदय लेकर बैठी रह गई। यह घाटा हो गया। यदि सदुपयोग कर लिए होते तो जाने वाली चीज तो जाएगी जरूर, लेकिन तुमको शुद्ध करके जाती, तुमको शांत करके जाती, तुमको आनंदित करके जाती तो लाभ हो जाता। समझ में आया? अब देखिए, अब जो गंदगी है उसकी सफाई कैसे होगी बताओ? आंख बंद करने से होए कि कान बंद करने से होए कि वृक्ष के नीचे बैठने से होए कि बालू में बैठने से होए, कैसे होगी बताओ? भाई सच्ची बात यह है कि इन बाहरी बातों से भाव शुद्धि कभी नहीं हो सकती। अतः एक उपाय यह हमारे सामने आ गया कि भाई बल आवे, संपत्ति आवे, पद मिले तो जल्दी जल्दी उसका सदुपयोग करके अपने भीतर के राग को मिटा लेने का साधन हम लोग करें। उससे क्या होगा कि जब जड़ता और कठोरता निकल जाएगी तो अपनी शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे हम हर प्रकार से हरि आश्रित होकर रह सकते हैं, हर प्रकार से शरीरों से असंग होकर रह सकते हैं। एक बार एक संत से मिलने में गई, वे मेरी उंगली पकड़कर मुझे ले गई कि चलो मैं बताती हूँ तुमको। वे मुझे ले जा करके उन्होंने एक स्थान दिखाया और कहने लगी कि देवकी, जब मेरे मन में बड़ी लगन जगी थी कि मैं कैसे सत्य से अभिन्न हूं, तो देखो घर का काम करते करते भीतर भीतर मुझ में बड़ी तड़पन होती रहती थी। और जैसे ही घर का काम खत्म हुआ तो मकान के पीछे दूसरे मकान की टूटी हुई दीवार उसकी आड़ में बैठ करके मैं बस उसी चिंतन में रहती थी। मैंने और कुछ नहीं किया, न जब करना जानू, न तब करना जानू, न पढ़ी लिखी हूं। फिर भी मैं बताती हूं आप भाई बहनों को कि उनको सफलता मिली और वे सिद्ध पुरुष हो गई। उनके शिष्य लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग जब कठिनाई में पड़ते हैं तो माता जी का दिया हुआ काले कागज का चार पन्ने का नोटबुक खोलते हैं और उसी में से हमको उत्तर मिल जाता है, उसी से हमारी समस्या हल हो जाती है। ऐसी थी वे सिद्ध पुरुष। अब मेरे दिमाग में यह चिंतन होने लगा कि इन माताजी में जैसी लगन थी वैसी लगन तो मुझ में है नहीं। मेरे व्यवहार में सभ्यता, शिष्टता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, भौतिकता आदि की प्रधानता है। मेरे भीतर की सारी जीवनी शक्ति एकदम अपने लक्ष्य की ओर इस तरह लग जाए कि दूसरी कोई बात सूझे ही नहीं, दिखे ही नहीं। ऐसी तैयारी मेरी नहीं है। माता जी की बातों को अपने सामने रखकर मैं बार बार सोचूं। और फिर मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ऐसा क्यों। मैंने महाराज जी से बातचीत की कि महाराज बताइए यह कैसे हुआ। माता जी को सब काम करते हुए भीतर ऐसी गहरी निष्ठा है, ऐसी गहरी निष्ठा है कि बस एक सेकंड के लिए अपने लक्ष्य की विस्मृति नहीं होती। चक्की चलाना, रोटी बनाना, संतों को भोजन कराना, सबकी सेवा कराना और आश्रम तो उनका ऐसा चमचमाता था कि कहीं भी एक भी मक्खी बैठी हुई दिखाई नहीं देगी। बड़ी सफाई, गाय के गोबर से सब लिपा हुआ, तुलसी के पौधे, केले के पौधे देख देख कर मैं आश्चर्यित होती रहती। इतना सब काम करते हुए भी उनको अपने लक्ष्य की विस्मृति नहीं होती थी। श्री महाराज जी ने कहा कि देखो देवकी जी, मस्तिष्क का जो विकास होता है उससे अधिक मूल्यवान है हृदय का विकास। हृदय अधिक मूल्यवान है और सभी साधकों को हृदयशीलता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अधिक पढ़ना लिखना करो, शास्त्रों के अध्ययन की उपाधियां ले लो। उसका अगर अपने में आभास बन गया कि दूसरे अन्य मामूली साधकों से मैं विशेष हूं, तो इस अपनी विशेषता के आधार पर अहम के पोषण में हृदयशीलता दब जाती है। हृदय का प्रवाह जो है वह अभिमान से दब गया। और माता जी का जीवन देखो, अभिमान की गंध नहीं है, उनके हृदय में बड़ी करुणा है। जिन साधकों में गुणों के आभास से हृदय की जड़ता और कठोरता बढ़ जाती है उनका विकास नहीं होता। गुणों के आभास ने अहम शून्यता में भगवत समर्पण को सजीव नहीं होने दिया। अतः हृदय का विकास जो है वह अहम के अभिमान से रुक जाता है। माता जी के हृदय में इतनी करुणा, इतना स्नेह है कि एक बार एक गौ को बच्चा हुआ और वह गौ माता मर गई। छोटा बच्चा उसका मां मां करके चिल्लाई तो माता जी के हृदय में इतनी करुणा उपजी, इतनी करुणा उपजी कि उनके स्तन से दूध बहने लगा। बुद्धिमत्ता के मुकाबले में यह करुणा, यह सहृदयता बहुत ऊंची है। समझ में आता है? सोच लो, सचमुच जो भोले भाले लोग होते हैं, हृदयशील लोग होते हैं, जो दूसरे का दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं, उनका विकास जल्दी होता है। उनकी मानसिक योग्यता, प्रतिभा कितनी है, इस पर विचार करने की बात नहीं होती। उनके जीवन में इतना फोर्स होता है, हृदय के रस से वे इतने गतिशील हो सकते हैं कि सच्ची बात उनके सामने आई तो उस सच्चाई को एकदम पकड़कर चल देते हैं। और अपने लोगों की दशा देखो, सच्चाई की बात सोचते सोचते इतने दिन बीत गए। ईश्वर विश्वास के आधार पर अपने को भक्तों की श्रेणी में शामिल करने की अभिलाषा लेकर कितनी प्रकार की बातें हम लोगों के जीवन में चल रही हैं। और आंख बंद करके, शांत होकर के, अकेले कुछ देर के लिए बैठो तो देखो, थोड़ी देर भी संसार के चिंतन से फ्री होकर के बैठने की क्षमता अपने को मिली कि नहीं मिली। सब कुछ करते कराते भी शरीर और संसार का सहारा छोड़कर अपने आप में चुपचाप शांत रहने की क्षमता आई कि नहीं आई। अपनी दशा अपने सामने रखकर सोचो तो यह उत्तर आता है कि सत्संग सुनते हुए भी, तीर्थों में वास करते हुए भी, अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए भी, शरीर और संसार का चिंतन छोड़कर शांत रहने नहीं आया। ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं आया शांत रहने? क्योंकि जीवन में रस की वृद्धि नहीं हुई। अब इसके आगे का कदम देख लीजिए, अब आगे और चलें। आगे क्या है कि जिन साधकों के जीवन में अपने सुख पर दृष्टि कम रही और परहित पर दृष्टि अधिक रही, वे पार पा गए। जिन साधकों के जीवन में हृदय की सरसता अधिक रही, वे विचार मार्ग के साधक होने पर भी विचार पूर्वक त्याज्य का त्याग करने में सफल हो गए। निश्चय किया कि यह छोड़ने के लायक है तो छोड़ दिया तत्काल, देर नहीं लगी। ऐसी शक्ति उनमें कहां से आई? उनकी जीवनी शक्ति जो थी वह स्वार्थपरता के दोष से कुंठित नहीं थी, इसलिए वे पार पा गए। ईश्वर विश्वास के साधकों ने, जिन्होंने प्रभु को अपना माना, उनको अपना आत्मीय कहकर स्वीकार किया, तो इस स्वीकृति के फल स्वरूप दूसरे सारे संबंध उनके तत्काल ही ढीले हो गए, छूट गए। श्री महाराज जी के संबंध में हम लोगों ने सुना है कि संत ने सलाह दी कि कि भैया ईश्वर के शरणागत हो जाओ। स्वामी जी महाराज ने प्रभु की शरणागति को स्वीकार किया। बड़ा भारी परिवर्तन उसी समय 11 वर्ष की उम्र में उनके जीवन में आ गया। सवेरे सवेरे उठने पर उनको स्नान वगैरह करा दिया जाता, माँ कपड़े पहना देती, कुछ खिला पिला दिया जाता। हाथ में एक छोटी सी छड़ी लेकर अकेले ही टटोलते टटोलते घर से निकल जाते। पता ही नहीं चलता, किसी को बताते ही नहीं, किसी को संग में लेते भी नहीं। और एकदम गांव के बाहर बगीचे में एक पुलिया की नहर के ऊपर जा करके बैठ जाते और सारा दिन वहां बैठकर बिता देते। शाम होने पर ऐसे ही टटोलते टटोलते घर आते। उनको देख करके ऐसा लगता कि जैसे संसार में किसी से कोई नाता नहीं है। स्वामी जी ने हम लोगों को बताया कि जब संत ने मुझे सलाह दी कि प्रभु के शरणागत हो जाओ, तो देवकी जी पता नहीं उस संत की वाणी में क्या जादू था। मैंने उनकी बात को स्वीकार किया तो उसके बाद ऐसी धुन लग गई कि जिसकी शरण मैंने ली है, जो मेरा शरण्य है, उससे मुझको तत्काल मिलना ही चाहिए। एक बड़ी ही तीव्र लगन लग गई जिंदगी में। ग्रंथ पढ़ा थोड़े, कीर्तन किया नहीं, यह सब तो कुछ करने का मौका ही नहीं था। आंखें थी नहीं, कहीं जा ही नहीं सकते थे, किसी से मिल ही नहीं सकते थे, पढ़ना लिखना कर ही नहीं सकते थे। पर ऐसी लगन लगी कि सारा जीवन उसमें प्रवाहित हो गया। उनके गुरु भाई हैं, संत हैं, अभी भी हैं, वे कहते हैं कि संन्यास लेने के लिए उनके गुरु ने आज्ञा दी पीछे और सिद्ध पुरुष ये प्रमाणित हो गए पहले। स्वामी जी महाराज के उम्र के बराबर के एक साधक हैं, वे कह रहे थे कि ऐसा लगता था कि न जाने कौन से गहरे चिंतन में स्वामी जी डूबे रहते थे। और थोड़े ही दिन के बाद इनके चिंतन की दशा जो थी, सो हमारे देखते ही देखते एकदम प्रसन्नता में बदल गए और मुखमंडल बिल्कुल दीप्यमान हो गया, एकदम चमक निकलने लगी इनके चेहरे से और बड़ी प्रसन्नता और खूब शांति दिखाई देने लगी। वे कहते हैं कि मैं बार बार उनको पकड़ के पूछता था कि स्वामी जी महाराज सच बताइए, आपको क्या मिल गया, आप ऐसे कैसे हो गए, आप में इतना परिवर्तन हो गया आदि। मैं आप भाई बहनों के सामने इस बात को इसलिए निवेदन कर रही हूं कि हृदय के विकास की बड़ी भारी आवश्यकता है। यह बात हमारी दृष्टि में आ जाए। श्री महाराज जी का हृदय बड़ा कोमल था। हमने सुना है कि बचपन में आम खाते समय कोई आम मुख में लगाएं पहले और बहुत मीठा लगे तो एकदम याद आ जाए इनको कि भाई ये तो बड़ा मीठा है, यह तो अपने उस मित्र को खिलाएंगे, जल्दी से उसको झोली में डाल लें। यह किस बात का उदाहरण है? यह हृदयशीलता का उदाहरण है। सुख सामने आया तो स्वयं भोगा नहीं गया, प्रेमी मित्र को सुख देने में आनंद माना। ऐसी हृदयशीलता जिसमें है उसको अल्पकाल में ही सफलता मिल गई। एक बात संत ने बता दी तो उसका ऐसा गहरा स्टैंप लग गया कि सन्यासी बनाए गए पीछे और प्रभु की शरणागति उनके जीवन में सिद्ध हो गई पहले। तो मैं जो कहना चाहती हूं वह बात अब स्पष्ट हो गई होगी। आप भाई बहनों ने इस महत्व को पकड़ लिया होगा कि हमारे जीवन में साधना के पथ पर अगर हमारी प्रगति नहीं मालूम होती है, शिथिलता मालूम होती है, तो उसका कारण यह है कि हम लोगों ने हृदय के पक्ष को विकसित नहीं होने दिया। कहीं बड़प्पन का अभिमान, कहीं पढ़ाई लिखाई का अभिमान, कहीं जप तप का अभिमान, कहीं बड़े श्रीमान होने का अभिमान, और कहीं मोह की जड़ता, कहीं लोभ की जड़ता, इन सब विकारों को मिटाए बिना काम नहीं बनता है। जब हृदय सरस होता है, भाव पक्ष सबल होता है, तो संपूर्ण शक्ति साध्य से जुट जाती है। साधक को कुछ भी करना शेष नहीं रहता, फिर तो साध्य की ओर से अपने को हटाना चाहो तो हटा नहीं सकते। बड़ा जोरदार आकर्षण होता है भाई, मुझ पर तो उन्होंने अपनी कृपा करके ही अपनी विभूतियों का दर्शन कराया, नहीं तो मैंने हृदय में इतनी कठोरता, इतनी जड़ता और ईश्वर के प्रति इतना विद्रोह भर लिया था कि वे करुणा करके, संत स्वरूप होकर के मुझको संभालते नहीं तो मेरी जिंदगी मिट्टी मिल गई होती। अपनी तरफ से श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं, सुख भोग की इतनी जबरदस्त कामना मुझ में थी कि जहां जहां सुख पर बाधा पड़े तो क्रोध से मैं बौखला जाऊं। किसने ऐसा विधान बनाया, किसने मुझको सृष्टि में भेजा, मेरे सामने से यह सुख का संसार मिट गया क्यों? कहां है सृष्टिकर्ता? उसको मेरे सामने आना चाहिए, मुझको उत्तर देना चाहिए। इस प्रकार विद्रोह से भरी थी मैं, परंतु वे करुणा सागर सचमुच सामने आए, सचमुच उन्होंने उत्तर दिया। मैंने क्रोध करके कहा कि आओ मुझको उत्तर दो, तो उन्होंने करुणा करके संत की वाणी में सब कुछ सुना दिया। मैं बिगड़ती रही, वे प्यार करते रहे। मैं नाराज होती रही और वे मेरी मदद करते रहे। यह कथा कहानी नहीं है, यह ग्रंथ के पढ़े हुए वाक्य नहीं है, यह मेरे जीवन के पृष्ठों पर लिखा हुआ है। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए इस बात में, कि हृदय में प्रेम की सरसता की वृद्धि जो है वह आत्मीय संबंध के आधार पर बढ़ती है। हृदय का रस जो है वह उसी आधार पर आगे बढ़ता है, प्रवाहित होता है, शुद्ध होता है। उनमें कितना मधुर आकर्षण है, किस प्रकार से अपने ही बच्चों को खींच करके अपने में मिला लेते हैं, इस बात का उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष करा दिया। उनकी कृपा का इतना खुले शब्दों में आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूँ कि उन्हीं की महिमा उन्हीं को सुना रही हूँ। मैं किसी आदमी से नहीं कह रही हूँ, उनकी कृपा है उन्हीं को सुना रही हूँ। और उसका आभास मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उस आकर्षण में कितनी पवित्रता है कि उसने आपको स्पर्श किया नहीं कि संसार खो गया, सब खत्म हो गया। इतनी जोरदार बात है, ये कल्पना नहीं है, अनुमान नहीं है, महिमावान की महिमा अपरंपार है। अगर कोई भाई या कोई बहन ज्ञान पंथ के साधक हैं और शरीरी जीवन की असंगता को, अविनाशी जीवन को, आनंदमय अस्तित्व को अनुभव करना चाहते हैं और उसकी ओर कदम बढ़ाने में कठिनाई हो रही है, तो वह अंतर्वासी कहीं चला नहीं गया, वह नित्य तत्व कहीं दूर नहीं गया, उसकी विभूतियां उसके लिए महंगी नहीं पड़ेंगी, वे अदृश्य रूप से आपकी मदद करते हैं और ज्ञान पंथ का साधक उनके ज्ञान स्वरूप से अभिन्न होकर आनंदित हो जाता है। आप शांत रहने का स्वभाव बनाइए, देखिए किस प्रकार स्वतः ही आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। और अगर समाज के साथ संपर्क पड़े तो जहां तक हो सके वहां तक हृदय की मधुरता और प्रियता को, सद्व्यवहार को, मीठे वचन को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। हृदयशीलता की वृद्धि से ज्ञान पंथ में, वैराग्य में भी बड़ी दृढ़ता होती है और हृदयशीलता की वृद्धि से विश्वास पंथ में, प्रभु विश्वास में, समर्पण भाव में भी बड़ी सजीवता आती है और इसी से साधक के जीवन में सफलता मिलती है। बहुत ही आवश्यक बात है, इस बात पर हम सब भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए और हृदयशीलता की वृद्धि होती जाएगी तो विचार के प्रकाश में जैसा हम लोगों को दिखाई देता है वैसा अनुसरण करने में हम सभी समर्थ हो जाएंगे। अब शांत होगा। दुख का कारण क्या है? संसार की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता पर विश्वास करना ही दुख का मूल है, क्योंकि यदि अनुकूलता का सुख न प्रतीत हो तो प्रतिकूलता का दुख नहीं हो सकता। सुख रूप बीज से ही दुख रूप वृक्ष हरा भरा होता है। जो अविचार रूप भूमि में अपने आप उपजता है, दुख दुखी की भूल से होता है। अतः दुखी को अपने दुख का कारण किसी और को नहीं समझना चाहिए। बेचारा जड़ संसार दुख दे नहीं सकता, और आनंद घन भगवान के यहाँ दुख है नहीं, इसलिए दुख दुखी की भूल से होता है। दुख किस प्रकार मिट सकता है? दुखी का दुख उसी समय तक जीवित है जब तक कि वह उसे संसार की सहायता से मिटाना चाहता है, क्योंकि संसार की कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है कि जो निर्दोष तथा सब प्रकार से पूर्ण हो। अतः दुख संसार की सहायता से नहीं मिट सकता। जिस काल में दुखी संसार की सभी सहायताओं का त्याग कर देता है, बस उसी काल में दुखहारी हरि उसका दुख हर लेते हैं। ऐसा भली प्रकार अनुभव हो चुका है। साधन से सफलता क्यों नहीं होती? जिस प्रकार बिना प्राण का शरीर कितना ही सुंदर क्यों न हो बेकार होता है, उसी प्रकार व्याकुलता रहित साधन कितना ही उत्तम क्यों न हो बेकार हो जाता है। साधन में सफलता न होने का सिर्फ यही कारण है कि कर्ता जिस लिए साधन करता है उसके बिना रह सकता है। यदि उसके बिना न रह सके तो सफलता अवश्य हो जाए। जिस प्रकार विषयों में मन लगता है वैसा ईश्वर में मन क्यों नहीं लगता? जैसा विषयों में मन लगता है वैसा ईश्वर में मन इसलिए नहीं लगता कि दुख की कमी है। प्रत्येक प्रवृत्ति में सुख तथा दुख का रस आता है। जिस प्रवृत्ति में सुख से दुख अधिक बढ़ जाता है वह प्रवृत्ति स्वयं मिट जाती है। यदि ईश्वर में अपने को लगाना चाहते हो तो दुख की कमी को पूरा करो। यदि दुख की कमी को पूरा करना चाहते हो तो दुखियों की जातीय संबंध होने पर एकता अवश्य होती है, यह सभी जानते हैं। पूज्य संत महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, हम सब लोग संत वाणी में मानव जीवन के उत्थान के उपाय सुन रहे थे। स्वामी जी महाराज ने यह बताया कि संसार से हमारा नित्य संबंध नहीं है, फिर भी हम संसार से संबंध मानते हैं और उसको सत्य भी मानते हैं। हमारा ऐसा मानना भूल है। जो संबंध पैदा होता है और टूट जाता है, बनता है और बिगड़ जाता है, उसको सत्य मानना चाहिए कि असत्य मानना चाहिए? बोलिए, असत्य मानना चाहिए। यह स्वामी जी महाराज के कहने से मालूम होता है कि आपको स्वयं जंचता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। मानव सेवा संघ की प्रणाली में साधकों की सहायता के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम इस विवेचन में मत पड़ो कि संसार सत है कि असत है कि कैसा है, क्योंकि संसार के संबंध में अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो चाहे जो भी हो, एक बात पक्की है, सभी युगों में, सभी देशों में, सभी मजहबों के अनुयायियों के लिए, साधक मात्र के लिए यह बात बिल्कुल पक्की है कि हम लोगों को संसार के माने हुए संबंध को सत्य नहीं मानना चाहिए, उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए और उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। जब हम जानते हैं इस बात को कि संसार के संबंध को हम निभा नहीं सकते, फिर भी उसको सत्य मानते रहते हैं, तो यह हमारा जाना हुआ असत है, इसका त्याग करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने तत्काल हमारी सावधानी के लिए यह कह दिया कि भाई देखो, दिखाई देने वाले जगत को अपना न मानना साधन है, लेकिन अपना न मानने पर भी उसकी सेवा करना अनिवार्य है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि सेवा किस लिए करूं? तो उसमें रहस्य यह है कि हम लोगों ने पहले संसार से संबंध माना था और संबंध मानने के कारण ममता से, आसक्ति से जो राग उत्पन्न हो गया है, उसकी निवृत्ति के लिए सेवा करना जरूरी है। शरीरों के साथ समाज में हम रहते हैं, तो इस दृष्टि से शरीर का और समाज का अच्छी तरह से परस्पर संबंध निभाना है, एक दूसरे को सहयोग देना आवश्यक है। अपना न माने परंतु सेवा करें, सेवा मत छोड़िए। अपना मानकर, ममता से प्रेरित होकर पशु पक्षी भी खूब सेवा करते हैं। आपने देखा होगा पक्षी के छोटे छोटे बच्चे चोंच खोलते हैं और मादा पक्षी दाना चुग चुग कर लाकर बच्चे के चोंच में डालती है, सेवा करती है। लेकिन मनुष्य सचेत है, विवेक के प्रकाश में उसने असत के संग का त्याग करने का निर्णय लिया है, सत्य को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इसलिए मनुष्य से यह आशा की जाती है कि वह देखे हुए जगत को अपना न माने, उससे ममता न करे, फिर भी निर्मम निष्काम रहते हुए उसकी सेवा करे। आज सत्संग के प्रकाश में यह सुनने को मिला कि जो अशरीरी जीवन के आनंद को पसंद करता है उसको नाशवान के साथ संबंध नहीं मानना चाहिए। देखिए, थोड़े दिनों का यह संयोग हमारा इस जगत में बनता है, उसको साधन रूप में बदल दो। साधन रूप में बदलने का तरीका क्या है? अपना मानना छोड़ करके सेवा करो। ममता तोड़ लिया और सेवा बंद नहीं किया, यह साधन है। कामनाएं अपनी हटा लें, बेटे बेटी भाई बंधु पति पत्नी किसी से अपने लिए मुझको कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार से कामनाएं अपनी हटा लें और सेवा करते रहे। ऐसा करने से आपके अहम में कोई नया राग अपना स्टैंप नहीं लगाएगा। संसार में रहने से राग नहीं बनता है, शरीरधारी होने से राग नहीं बनता है। शरीरधारी होकर शरीरों से संपर्क बनाने में अपनी ममता, अपनी कामना जो हम रखते हैं उससे राग बनता है। अतः अपने लोगों को क्या करना है? तो भाई, हम तो सत्संगी हैं, हमें सत्संग करना है। कैसे सत्संग करोगे? तो सत्संग करेंगे इस प्रकार से कि जीवन में जो अपना जाना हुआ असत है उसे छोड़ देंगे। जाना हुआ असत यह है कि संसार कैसा है यह तो संसार जाने और संसार का मालिक जाने, लेकिन हम स्वयं इस बात को जानते हैं कि इनको अपना मानना मिथ्या है। अतः इसको अपना मानना बंद कर दिया, सत्संग हो गया। फिर भी सेवा करेंगे तब क्या फल निकलेगा? अपना नहीं मानेंगे तो नया राग नहीं बनेगा, और निष्कामता पूर्वक सेवा करेंगे तो पुराने राग मिट जाएंगे। साधना की सिद्धि में आने वाली सब बाधाएं मिट जाएंगी। बहुत आवश्यक बात है, साधक भाई बहनों को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब तक संसार से चाहे जितना भी संबंध हमने माना हो और उसके फल स्वरूप जो भी कुछ विकृतियां भीतर पैदा हुई हो, कोई चिंता की बात नहीं। आज से आपने अपने को सत्संगी स्वीकार किया, साधक स्वीकार किया, तो जीवन के इस तथ्य को अपनाइए। अपना नहीं मानिएगा तो नया राग नहीं बनेगा, और निष्कामता पूर्वक सेवा करिएगा तो पुराने राग मिट जाएंगे। सब प्रकार की बाधाएं मिट जाएंगी। आज देखिए, कर्तव्य से हम वंचित हैं तो राग के कारण, अशरीरी जीवन की शांति और शरीरी जीवन के आनंद से हम लोग वंचित हैं तो राग के कारण, भगवत अनुराग का रस नहीं बढ़ा
तो राग के कारण असली बीमारी तो वही है, उसी बीमारी को मिटाने का उपाय हम लोगों ने कर लिया तो संसार के बंधन से छूट गए, फिर तो कोई बाधा नहीं है। अब आगे बढ़ो, अब सुना हुआ परमात्मा है, यद्यपि वह सुना हुआ है दिखाई नहीं देता, जाना नहीं जाता, लेकिन मैं क्या बताऊं, इतना प्रचंड है कि न दिखाई देने पर भी न जान पहचान होने पर भी हम लोगों के भीतर बाहर बड़े जोर से भरा रहता है और अपनी उपस्थिति का परिचय भी देता रहता है। परमात्मा इतना शक्तिशाली है, चाहे अनुकूलता पर हमारी दृष्टि जाए, चाहे प्रतिकूलता पर हमारी दृष्टि जाए, अगर आप मनुष्य हैं तो उस नित्य विद्यमान परमात्मा की शक्तियों का परिचय हर समय आपको मिलता ही रहता है। प्रत्येक भाई बहन किसी न किसी रूप में उनका होनापन स्वीकार करते ही हैं। अब विचार यह करना है कि भाई सुने हुए परमात्मा के प्रति हम क्या करें। हमारी उत्पत्ति का जो आधार है वह अदृश्य है, अगम्य है, हम लोग उसको जान नहीं सकते हैं, इंद्रियों से बुद्धि से अनजान वह है, फिर भी उसी की सत्ता पर हमारी सत्ता आधारित है। इस सत्य को न मान करके हम उसकी ओर से विमुख हो जाते हैं, उसके दिए हुए बल को अपना बल मान लेते हैं, उसकी दी हुई सत्ता को अपनी सत्ता मान लेते हैं, उसकी दी हुई सामग्रियों को अपनी सामग्री मान लेते हैं, अपनी उपार्जित मान लेते हैं और सीमित अहम के अभिमान में आबद्ध हो जाते हैं। परिणाम देखिए, परमात्मा से विमुखता होते ही जीवन में आसक्ति भर गई, कामनाएं भर गई, नीरसता छा गई, मृत्यु का भय सताने लगा और सुख दुख के द्वंद में हम फंस गए। अब क्या करें, उस परमात्मा को सर्व उत्पत्ति का आधार मान करके उसी से अपना नित्य संबंध स्वीकार करना चाहिए। वही हमारा परम आत्मीय है, अपने से अधिक अपने निकट और घनिष्ठ है, उसी का संबंध नित्य है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, ऐसा हम लोगों को अपने द्वारा स्वीकार करना चाहिए। इन दो बातों से साधक समाज की साधना के मार्ग की सब बाधाएं दूर होती हैं, दिखाई देने वाले संसार के अपने माने हुए संबंधों को हटाकर उसकी सेवा करें और बिना देखे बिना जाने परमात्मा से अपने आत्मीय संबंध को स्वीकार करके उनके आश्रित होकर रहें। इसी का नाम सत्संग है। जिन्होंने ऐसा कर लिया उनका काम बन गया। कभी कभी मुझे मजा आ जाता है तो मैं आनंदित होकर कहती हूँ कि हे सृष्टि, तुम मेरे प्यारे प्रभु की हो, आबाद रहो, आनंदित रहो। परमात्मा को कहती हूँ कि हे महाराज, यह सृष्टि आपको मुबारक हो, आप ही ने बनाई है, आप ही संभालते हैं, आप ही रखते हैं। अब मुझे तो अपनी इस सृष्टि से छुट्टी दिलाइए, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपकी सृष्टि में हस्तक्षेप किया, इसी भूल से मैंने कष्ट पाया, अन्यथा संसार में किसी प्रकार से मुझको नुकसान पहुंचाने की सामर्थ्य नहीं है और परमात्मा नुकसान पहुंचाएंगे ही क्यों, वे तो हमारी पीड़ा से पीड़ित ही होते रहते हैं, हमारी दशा देखकर करुणित ही होते रहते हैं, वे आनंद स्वरूप जो ठहरे वे क्यों किसी को कष्ट देंगे। कष्ट अपनी ही भूल से है, इस भूल को मिटाना सत्संग कहलाता है। संसार नाशवान है, इस दार्शनिक सिद्धांत को प्रमाणित करना सत्य की चर्चा कहला सकती है, सत्संग नहीं। सुनने के बाद उसके अनुसार मैंने निर्णय ले लिया तो सत्संग हो गया, और सत्संग हो गया तो जीवन बदल गया। आज हम लोग अपने द्वारा जाने हुए असत को त्यागने में असमर्थ हो रहे हैं और माने हुए सत्य का अनुसरण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर हम लोग सर्व सामर्थ्यवान को याद करते हैं, अपने में अनेकों प्रकार के दोषों को देखकर पतित पावन प्रभु को याद करते हैं, अपनी दीन दशा को देखकर दीन बंधु को याद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। भक्तजन बताते हैं कि देखो, अगर उनसे मिलना चाहते हो, सदा सदा के लिए निश्चिंत और निर्भय होना चाहते हो, तो एक बार अपने सहित अपने पास जो कुछ तुमको दिखाई देता है सब उनके समर्पित करके शरणागत हो जाओ। प्रभु के आश्रित हो जाओ, फिर तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सीमित अहम भाव का अभिमान लेकर के ही हम लोग जन्म मरण के बंधन में पड़े हुए हैं। इस अहम के अभिमान को गलाने के लिए विश्वास पथ के साधकों में भगवत समर्पण के समान दूसरा कोई अचूक उपाय नहीं है। समर्पण के भाव में अभिमान रहता ही नहीं है, क्योंकि अपने लिए और कुछ करणीय शेष नहीं रहा। अहंकृति शांत हो गई। विश्वास पथ के साधक जब अपने जीवन के आधार को सर्वसमर्थ प्रभु को अपना मान लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि मेरे उद्धार के लिए मुझमें जितनी तत्परता नहीं है, उस करुणा सागर में मुझ फंसे हुए को उबारने के लिए उतनी अधिक तत्परता है। जिन जिन लोगों ने विश्वास किया था उन सभी को इसका अनुभव भी हो गया। सभी अनुभवी संत जनों ने, भक्त जनों ने हम लोगों को बताया कि वे जगत पिता, वे जगत जननी हमको अपनी गोद से कभी अलग करते नहीं है। कैसे करेंगे, कहाँ रखेंगे, उनसे कोई जगह खाली हो तो अपने में से निकाल के वहां फेंक दें। आप बताइए, खाली है कोई जगह? कोई ऐसी जगह है जहां वे न हो जी? ऐसी तो कोई जगह नहीं है। कहां भेजेंगे? अपने ही में से उन्होंने हमें बनाया है, अपने परम प्रेम के रस से वे हम लोगों को पालते हैं, तो फेंकेंगे कैसे? हटाएंगे कहां? छोड़ेंगे कैसे? वे छोड़ नहीं सकते, हम लोगों को अपने से अलग नहीं कर सकते। तभी तो उनके विशेषणों में से एक बड़ा भारी विशेषण है, अनंत माधुर्यवान। प्रभु अनंत माधुर्यवान है। अनंत माधुर्यवान का अर्थ होता है कि जो सभी को अपना कर अपने में रखता है, उसका नाम है अनंत माधुर्यवान। यह विशेषण हम लोगों के लिए बहुत ही आश्वासनप्रद है। इसको हम भूल जाते हैं और इसीलिए कष्ट में पड़ जाते हैं, अपने को कष्ट इस कारण से होता है कि हम भूल गए कि अपने परम आत्मीय प्रेम स्वरूप परमात्मा की गोद में ही हम लोग हैं। अगर हम भूल नहीं जाते तो प्रेम स्वरूप परमात्मा के परम प्रेम रस के अधिकारी मानव को कष्ट कैसे हो सकता? कभी नहीं हो सकता। खैर, फिर भी एक बढ़िया बात यह है कि हम भले ही उन्हें भूल जाएं, वे हमें कभी नहीं भूलते हैं। विस्मृति का दोष परमात्मा में नहीं है। इतना होते हुए भी साधना में शिथिलता क्यों है? अब आज सोच के देखो, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, बड़ा ठोस तथ्य है कि जितना विश्वास जन्मने मरने वाले संतान में है, उतना विश्वास उस अलख अगोचर अजन्मा अविनाशी में है क्या? बड़ी गंभीर बात है। हम सब लोग ईश्वर विश्वास के पथ को पकड़कर साधक बने हैं और दिन रात इस धुन में लगे हैं कि कैसे इस कठोर जड़ हृदय में प्यारे प्रभु के प्रेम का प्रवाह उमड़े। लेकिन उस पर पत्थर पड़ा है, क्या बताएं, हृदय पिघलता ही नहीं है। क्यों भाई, रस प्रवाहित क्यों नहीं होता है? आपने सुना होगा भक्तों के जीवन को, किसी को उनकी याद आती है तो उसके हृदय में वे प्रकट हो जाते हैं, दर्शन के आनंद में वह साधक बहुत बहुत दिनों के लिए समाहित हो जाता है। किसी को उनकी याद आती है तो उस याद में उसका अहम ही खो जाता है, डूब जाता है। मैं क्या बताऊं, जैसे जैसे उनकी महिमा का दर्शन होता है, हृदय सरसता से भरता है और मैं बहुत प्रसन्नता से कहती हूँ कि प्यारे प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां दोहराती हूं मैं, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, आपने बड़ा अच्छा किया कि जब जब मैंने अपने स्वप्निल जगत रचाए तब तब आपने सारा उजाड़ कर फेंक दिया। बड़ा अनुग्रह किया आपने, असत के संग में मुझको सांस ही नहीं लेने दिया, बिल्कुल बेचैन करके रखा। आज उसका बड़ा अनुकूल परिणाम है मेरे सामने। किसी दिन जिन बातों को जीवन का अभिशाप मानती थी मैं, आज वे मेरे लिए वरदान प्रमाणित हो गए। बहुत बढ़िया बात है। आप गंभीरता पूर्वक अकेले अकेले में बैठ करके इस विषय पर विचार करिए। दुख भरे संसार को केवल अपना मानने का संबंध तोड़ना है और तो कुछ नहीं करना है। उसमें भी हमने इतनी देर लगा दी। बीमारी और बढ़ती चली जा रही है, नया नया राग अंकित होता चला जा रहा है, रास्ता और अधिक अधिक लंबा होता जा रहा है। कब तक ये दशा रखोगे? सर्व सामर्थ्यवान प्रेम स्वरूप परमात्मा, नित्य संबंधी, जिन्होंने हम लोगों को अपनी गोद में पकड़ रखा है, उनको अपना मानने में हमने इतनी देर लगा दी। मान ही नहीं सके आज तक, विश्वास ही नहीं कर सके आज तक। सोचो, बहुत ही निश्चिंत हो करके यहां से उठने के बाद आप भाई बहनों को जब भी मौका लगे अकेले में बैठ करके इस बात को सोचिएगा और खूब दृढ़ता पूर्वक अपनी तरफ से धारण करिए कि जो नहीं है उसको नहीं करके निश्चय करना ही है, और जो है उसको अवश्य अपने द्वारा स्वीकार करना ही है। सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इसमें एक बड़ा रहस्य है, अब मैं उसकी चर्चा करती हूं, उससे हमारा साधन पथ स्पष्ट हो जाएगा। मानव जीवन की बात है, विचार करिए। आंख में रास्ता देखने की शक्ति है परंतु चलने की शक्ति नहीं है। पांव में चलने की शक्ति है परंतु देखने की शक्ति नहीं है। स्पष्ट है कि पांव को आंखों का अनुसरण करना पड़ेगा और आंखों को पांव का सहयोग लेना पड़ेगा। तभी रास्ता तय होगा। दोनों से काम लेना है। आंखों से जो ठीक रास्ता दिखाई दे उसी पर चलना चाहिए, यह निश्चय हुआ अपना। फिर पांव की शक्ति का उपयोग करके मंजिल पर पहुंच जाओ। बिल्कुल युक्ति युक्त बात है। अब साधक के सामने कठिनाई क्या हो गई कि विवेक के प्रकाश में सन्मार्ग साफ साफ दिखाई दे रहा है, परंतु उसका अनुसरण करने की सामर्थ्य अपने में नहीं है, समझ बूझ की कमी नहीं है। विवेक का प्रकाश मंद नहीं हुआ है, वह अविनाशी तत्व है, उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि स्वयं प्रकाश्य परमात्मा में से वह आ रहा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का विवेक कभी लुप्त नहीं होता है, वह काम कर रहा है, सन्मार्ग दिखाना उसका काम है, गतिमान होना उसका काम नहीं है। सन्मार्ग पर चलने के लिए दूसरी शक्ति चाहिए, उसको मनुष्य के व्यक्तित्व का भाव पक्ष कहते हैं, हृदय पक्ष कहते हैं, जो कि जीवन को गतिमान करने वाला तत्व है। मनोवैज्ञानिक भाषा में उसे डायनामिक फोर्स कहते हैं। अगर विचार के विकास के साथ हृदय पक्ष का समान विकास नहीं हुआ तो जीवन को सतपथ पर गतिमान करने वाली शक्ति विकसित नहीं होती है, साधन में सफलता नहीं मिलती है। अतः साधक में हृदय और मस्तिष्क दोनों का समान विकास होना चाहिए। अगर विचार अविकसित रह गया तो साधक को पथ भ्रांति हो सकती है, और हृदय अविकसित रह गया तो साध्य से अभिन्नता नहीं हो सकती है। अतः दोनों का विकास अनिवार्य है। अब प्रश्न यह है कि हृदय पक्ष को सबल और सरस कैसे बनाया जाए। सब पुरुषों की संगति में रहकर, माता पिता गुरुजनों की परिश्रम पूर्वक सेवा करके, प्राणी मात्र के प्रति करुणा और उदारता का भाव रखकर हृदय की कोमलता को बढ़ाया जाता है, जिससे जीवन को गतिमान करने वाली भाव शक्ति की वृद्धि होती है। साधक को अपनी साधना में सफलता मिलती है, बिल्कुल पक्की बात है। मनुष्य के व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा गया समझने के लिए। जीवन संबंधी घटनाओं का अध्ययन करके, सदग्रंथों का अध्ययन करके जीवन संबंधी जानकारी बढ़ गई, अच्छा हुआ। विचार करने से पता चल गया कि सुख सुविधा सम्मान के लिए कामनाओं के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, कामना निवृत्ति की शांति की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब साधक दुविधा में पड़ा रहता है। उसके हृदय की जड़ता जो है उसको तोड़ने का उपाय नहीं करने से कामना पूर्ति का सुख छोड़ा ही नहीं जाता। साधक समाज की इस कठिनाई को मैं बहुत अच्छी तरह महसूस करती हूँ, क्योंकि इन कठिनाइयों के भीतर से होकर निकलते समय मैंने अपना चित्र देखा है। बिल्कुल सच्ची बात है, आदमी जहां के तहां अटका रहता है, क्योंकि वह शक्ति जो साधक को साध्य की ओर गतिमान करती है वह शिथिल रह गई है। उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? एक उपाय यह है कि जहां भी कहीं सुख सुविधा अपने को मिले उसको अधिक जरूरतमंद की सेवा में लगा दें। दुखी जनों की सेवा से सुख भोग की वासना मिटती है। प्रैक्टिकल साधन है, प्रयोग करके देखिए। ऐसा गहरा रहस्य है मानव जीवन का, कि बड़ा भारी प्रभाव है इसका। साधकों के मुख से आपने बहुत सुना होगा, क्या बताएं? अपने द्वारा अच्छी तरह से यह जान लेने पर कि संसार निहसार है, इसकी ओर से चित्त हटता ही नहीं है। भक्तजनों के द्वारा यह सुना दिया गया कि रस स्वरूप परमात्मा को अपना माने बिना जीवन की नीरसता का नाश नहीं होगा। भीतर बड़ी लालसा भी जगती है कि कितना अच्छा होता कि हम उनको अपना मान करके सदा सदा के लिए नीरसता की पीड़ा से मुक्त हो जाते। फिर भी अपने माने हुए दुनिया के संबंधी जितने निकट मालूम होते हैं वे घट घट बाकी अंतर्यामी अपने को अपने से बहुत दूर लगते हैं। हृदय में सुख भोग की तृष्णा से इतनी शुष्कता, इतनी जड़ता, इतनी नीरसता भर जाती है कि प्रेम स्वरूप परमात्मा की विद्यमानता से उनके प्रेम रस की मधुर लहरियां जो भीतर भीतर उठ रही हैं, हृदय को छू रही हैं, तो उनके स्पर्श का अपने पर कोई प्रभाव ही नहीं होता। और भीतर की इस शुष्कता, इस नीरसता ने जीवन को इतना शिथिल बना दिया कि जिस सत्य को सत्य कहकर स्वीकार किया मैंने, उसका प्रभाव अपने पर नहीं हुआ। जिस जाने हुए असत को असत कहकर छोड़ना पसंद किया मैंने, उसको छोड़ ही नहीं सके। तो और किसी उपाय से, किसी बाहरी विधि विधान से, किसी नियम अनुष्ठान से यह दोष नहीं मिटेगा। साधक के जीवन की बड़ी गहरी व्यथा है और बड़ी भारी बाधा है कि हृदय शुष्क और नीरस पड़ा रहे। इसको मिटाने का जल्दी जल्दी उपाय हम लोगों को करना चाहिए। कुछ उपायों की चर्चा आज हो गई और शेष चर्चा अब फिर कल करेंगे। सर्वसमर्थ प्रभु अपनी उदारता से, अपनी महिमा से सब प्रकार से हम लोगों के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए सदैव तत्पर हैं। हम उनकी कृपालुता की आवश्यकता महसूस करें, उनकी कृपा शक्ति हमारा कल्याण कराए। अब शांत हो संयम क्या है? जो सुनने वाले की प्रसन्नता के लिए बोलता है, जो मिलने वाले की प्रसन्नता के लिए मिलता है, जो खिलाने वाले की प्रसन्नता के लिए खाता है, जिसकी आंखें रूप की सार्थकता के लिए देखती हैं, जिसके कान शब्द की सार्थकता के लिए सुनते हैं, जिसकी नाक गंध की सार्थकता के लिए सूंघती है, इसी न्याय के अनुसार जिसकी सभी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का कर्ता पर कुछ अर्थ नहीं होता। अर्थ रहित क्रियाओं से राग मिट जाता है, राग मिटते ही त्याग हो जाता है, त्याग होने पर धारणा ध्यान तथा समाधि अपने आप हो जाती है, और इन तीनों का एक हो जाना ही सच्चा संयम है। संयम पूरा हो जाने पर व्याकुलता पूर्वक सत की अभिलाषा उत्पन्न होती है, जो सत का मार्ग है। दुख की महिमा। कमी होते हुए कमी का अनुभव न करना परम भूल है। दुखी होने पर कमी का अनुभव और कमी के अनुभव करने पर दुख होता है। मनुष्य किसी शरीर का नाम नहीं है। दुख जीवन में परम आवश्यक वस्तु है, क्योंकि प्यारा दुख हमको अनित्य से हटाकर नित्य आनंद से मिलाता है। दुख सब प्रकार के विकारों को मिटाकर अंत में अपने आप मिट जाता है। दुख के मिटने पर आनंद का अनुभव होता है। दुख के बिना जीवन बेकार समझना चाहिए, क्योंकि दुख के बिना जीवन की पूर्णता सिद्ध नहीं होती। दुख जैसी प्रिय वस्तु किसी और को न देनी चाहिए, यदि मिल सके तो दूसरों से ले अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, उनको अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। दुखियों के दुख के आधार पर ही सुखियों का सुख, उन्नतिशीलों की उन्नति, विचारशीलों का विचार, प्रेमियों का प्रेम, विज्ञानियों का विज्ञान तथा योगियों का योग जीवित है। अर्थात ऐसी कोई अच्छाई नहीं कि जिसका जन्म दुख से न हो। दुखी को दुख उस समय तक न भूलना चाहिए कि जब तक स्वयं मिटकर आनंद में विलीन न हो जाए। दुख से डरो मत। जो दुख से डरता है वह कुछ नहीं कर सकता। आपके निज स्वरूप में अपार आनंद छिपा है, जो दुख की कृपा से मिलेगा, सुख की कृपा से नहीं। जीवन के दो ही स्वरूप सार्थक हैं, या तो हृदय में दुख रूप अग्नि जलती रहे, यह हृदय में आनंद का सागर लहराता रहे। इसके सिवा अन्य प्रकार का जीवन मनुष्यता के विरुद्ध है।